अभिमन्यु घर वापस लौट आया था। मित्तल फैमिली वहां उसके आने का इंतजार कर रही थी। नैना चाहती थी कि अभिमन्यु की जिंदगी में इशिका के जाने के बाद जो खालीपन बन गया है वो अंजलि पूरा करे, लेकिन अंजलि के कोई रिस्पॉन्स ना देने पर नैना उससे मिलने के लिए वहां पर आ गई थी। अभिमन्यु नहीं चाहता था कि वो बार बार वहां पर आए, इसलिए उसने उनसे काफी रूडली बात की और फिर अपने कमरे में चला गया। तो वहीं अपने रूम के आगे खड़े नक्श ने उनकी बातें सुनी तो उसके दिमाग में कुछ और ही पकने लगा। अभिमन्यु ऐसा इंसान नहीं था जो आसानी से अपनी जिद छोड़कर किसी की भी बातों में आ जाए। जब इशिका मरी थी तो वो एक ही जिद पर अड़ा था कि इशिका जिंदा है। अब अचानक उसके ये सच एक्सेप्ट करने पर नक्श को कुछ खटक रहा था। ऊपर से अभिमन्यु दिल्ली भी बिजनेस करने के लिए आ गया था, जिसकी उसे कोई जरूरत भी नहीं थी। नक्श वापस अपने कमरे में गया और उसने तुरंत उर्वशी को कॉल किया। उसने कॉल पर कहा, मॉम, हम कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है इशिका जिंदा है और चाचू इस बात को जानते हैं। हो ना हो इशिका दिल्ली में है, तभी उसके पीछे चाचू यहाँ आए हैं। अभिमन्यु और नक्श को दिल्ली आए हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन इतने दिनों में नक्श कभी भी खुद से उर्वशी को कॉल नहीं किया था। अगर उर्वशी का कॉल आ भी जाता तो नक्श बस हाँ या ना में जवाब देकर कॉल कट कर देता था। आज उसने खुद से उर्वशी को कॉल किया था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद उर्वशी ने इरिटेट होकर कहा, फॉर गॉड सेक नक्श, होश में आओ, वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही है। इस सच को उसके पति तक ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तुम हो कि उसके जाने का दुख बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार थोड़ा लॉजिकली सोचिए। चाचू को क्या ज़रूरत थी यहाँ दिल्ली जाकर बिजनेस करने की? वो ऐसे इंसान नहीं है जो खुद को प्रूफ करे, वो भी प्रेशराइज होकर तो बिल्कुल नहीं। नक्श ने उर्वशी को सब समझाने की कोशिश की, पर उर्वशी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उर्वशी ने गहरी सांस ली और थोड़ा नरम लहजे में कहा, तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता था तुम उस लड़की से इस हद तक प्यार करते हो। पता है, आज तुम्हारा कॉल देखकर मैं काफ़ी खुश हुई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ये पागलपन भरी बातें सुनाने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो। उर्वशी नक्श का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर नक्श गुस्सा हो गया। मॉम, एक बार आप मेरी बातों पर गौर तो करके देखिए। मैंने आपको एक उम्मीद से कॉल किया था ताकि आप मेरी हेल्प कर सकें। मुझे लगा किसी और को मेरी बात पर यकीन हो या ना हो, आप मुझ पर यकीन करेंगी। नक्श ने थोड़ा इमोशनल होकर जवाब दिया। उर्वशी भी गलत नहीं कह रही थी। नक्श के लिए ये दुख बर्दाश्त से बाहर था कि इशिका अब इस दुनिया में नहीं रही। नक्श की आवाज़ से उसकी तकलीफ जाहिर हो रही थी। उर्वशी ने उसे फिर से समझाते हुए प्यार से कहा, बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं सबूत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ। उस बॉडी का DNA राधिका जी से मैच हो गया था। इशिका उनकी इकलौती बेटी थी। रही बात अभिमन्यु के दिल्ली जाकर बिजनेस करने की, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे राजवंश एम्पायर के CEO की पोजिशन से हाथ धोना पड़ता। तुम खुद सोचो कि उसकी जगह तुम दिल्ली में हमारा बिजनेस सेट करते तो जो भी शेयर होल्डर्स उसके फेवर में है वो हमारी तरफ आ जाते। उसने अपनी पत्नी को खो दिया है, पर वो ये पोजीशन को नहीं खोना चाहता है। उर्वशी आगे भी नक्श को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नक्श ने बीच में ही कॉल कट कर दिया था। उसने अपना मोबाइल फेंकते हुए गुस्से में कहा, किसी और को मेरी बात पर यकीन हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगा कि इशिका जिंदा है। मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, अपनी हर एक गलती के लिए माफी मांगूंगा, उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा। चाचू तो उससे प्यार भी नहीं करते हैं। जरूर ये शादी अनजाने में हुई है, इशिका मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। नक्श बिल्कुल किसी साइको की तरह बात कर रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वो घर पर काम देखने के बजाय अभिमन्यु के साथ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ इशिका युविका के साथ थी। युविका ने कुछ अनजान लोगों का जिक्र किया जो ईशानी को परेशान करते थे। बातों ही बातों में इशिका ने उनके बारे में पूछा, क्या मैंने तुम्हें उन लोगों के बारे में बताया था जो मुझे परेशान करते हैं? इशिका ने युविका को घूरते हुए पूछा। कहाँ बताया था, तुमने यही कहा था कि तुम उनके बारे में नहीं बता सकती हो। मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे राज के बारे में जानती हूँ, पर इस बारे में ही मुझे कुछ पता नहीं है। अब तो उनके बारे में बता दो, वो आखिर कौन है? युविका ने मुंह बनाकर कहा। युविका का जवाब सुनकर इशिका के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए थे। उसने तुरंत ही खुद को नॉर्मल किया और कहा, तुम जानती हो ना मैं उनके बारे में नहीं बता सकती, पर डोंट वरी, अब वो मुझे परेशान नहीं करते हैं, मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम धीरे धीरे अपनी लाइफ की सभी बुरी चीज़ों से बाहर आ रही हो। युविका मुस्कुराकर बोली और उसने तुरंत ही इशिका को हक कर लिया था। अंदर ही अंदर इशिका को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो उसे मर्चेंट फैमिली तक पहुंच सके। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी युविका उससे अलग होकर बोली, चलो ना पार्टी करते हैं, कब तक यूं ही इस तरह बात करते रहेंगे? इशिका ने उसकी बात पर सहमति जताई। पिछले काफी दिन उसके लिए थका देने वाले थे और उसने कभी भी चैन से खाना तक नहीं खाया था। हाँ, बीच में उसकी 2 बार अभिमन्यु से मुलाकात हुई थी, पर उन सब में भी उसे राधिका की ही फिक्र सताती रहती थी। युविका और ईशानी ने साथ में मूवी देखी और फिर डिनर किया। उसके बाद इशिका सोने का बोलकर अपने कमरे में आ गई थी। हालांकि युविका उसके साथ सोना चाहती थी, लेकिन रूही का बहाना बनाकर इशिका अकेले ही कमरे में चली गई। अभिमन्यु ज्यादातर बाहर रहता था तो जरूर वो इशिका से रोज मिलने जाता होगा। ये सोचकर नक्श ने एनी टाइम अभिमन्यु के साथ रहने का डिसीजन लिया। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में आने के बाद अभिमन्यु ने शावर लिया। पहले यही होता था कि अभिमन्यु ऑफिस से वापस आने के बाद फ्रेश होकर वापस काम लग जाता था, लेकिन आज उससे अलग वो बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वो उन लम्हों के बारे में सोच रहा था जो आज उसने इशिका के साथ बिताए थे। अभिमन्यु ने अपना मोबाइल उठाया और तुरंत ही इशिका को कॉल लगा दिया था। अब उसे इस बात की फिक्र भी नहीं थी कि इशिका तरुण की फैमिली के आसपास होगी। वहीं कुछ ऐसा ही हाल इशिका का था। वो रूही के पास सोई हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो तो अभिमन्यु की तरह उन लम्हों में खोई हुई थी जो उसने अभिमन्यु के साथ बिताए थे। जैसे ही इशिका का मोबाइल रिंग हुआ, उसने जल्दी से कॉल रिसीव करके कहा, तुम्हें इस तरह कॉल नहीं करना चाहिए। हाँ, अब हालात पहले से अलग हो गए हैं, पर आज युविका मेरे साथ सोने की जिद कर रही थी। वो तो मैंने रूही के अकेले होने की बात कहकर टाल दिया था, वरना ऐसे ही उसे मुझ पर डाउट हो रहा था कि मैं किसी से मिलकर आई हूँ। अच्छा, और उसे डाउट कैसे हुआ? अभिमन्यु ने जल्दी से पूछा। इशिका ने बिना सोचे समझे जवाब में झट से कहा, क्योंकि मेरी बॉडी में से तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल आ रही। बोलते हुए इशिका रुक गई और उसके गाल लाल होने लगे थे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, तो वहीं उसका जवाब सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। अच्छा, तो फिर ऐसा करना, जब भी मेरे क्लोज आओ अगली बार अपना परफ्यूम अपने साथ लेकर आना, या फिर ऐसा करना नहाने के बाद ही वापस घर जाना, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। इशिका को समझ नहीं आया वो आगे क्या बोले। उसने बात को टालते हुए कहा, तुम अब तक सोए क्यों नहीं, काफी देर हो गई है।
अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, बात को टालने का तरीका अच्छा है मिसेज राजवंश। खैर, नींद की बात करें तो वो तो तुम्हें भी नहीं आ रही, कारण दोनों का सेम ही है। पता नहीं ये कब तक और झेलना पड़ेगा। सीरियसली, पृथ्वी ने जमीन आसमान एक कर दिया है, पर मिसेस सिंघानिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि उसे इशिका से दूर रहना पड़ रहा था। मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि कल या बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। न जाने हम उन तक कब तक पहुंचेंगे। मैं भी इन सबसे बहुत थक गई हूँ। मुझे फिर से अपनी वही पुरानी लाइफ चाहिए जहाँ मैं तुम्हारे और दादी के साथ रह सकूँ, इशिका ने थके स्वर में कहा। अभिमन्यु इस तरह उसे परेशान भी नहीं करना चाहता था। इशिका के परेशान स्वर सुनकर वो जल्दी से उठकर बैठा और हल्के तरीके से कहा, अच्छा ठीक है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर फिर भी एक दिन सब ठीक होना ही है। तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? अगर तुम मेरे पास होती तो मैं बचपन की तरह तुम्हारे बालों में उंगलियां घुमाते हुए तुम्हें आराम से सुला देता। तो तुम्हें अभी भी सब कुछ याद है? इशिका ने हल्का मुस्कुराकर पूछा। अभिमन्यु के साथ बिताया हर लम्हा उसके लिए खास था। बचपन से लेकर आज तक जब भी वो अभिमन्यु के करीब होती थी तो उसे ऐसे लगता था जैसे दुनिया में कभी कोई तकलीफ है ही नहीं। बिल्कुल, मुझे सब याद है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु इशिका से देर रात तक तब तक बातें करता रहा जब तक उसे नींद नहीं आ गई। कॉल पर जब अभिमन्यु को इशिका की आवाज़ नहीं आई तो उसने कॉल कट कर दिया था। अभिमन्यु ने इशिका के सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन मिसेस सिंघानिया का इस तरह न मिलना सच में एक चिंता का विषय था। अभिमन्यु ने तुरंत पृथ्वी को कॉल किया। देर रात 2 बजे अभिमन्यु का कॉल आने पर पृथ्वी भी थोड़ा घबरा गया था। उसने जल्दी से पूछा, सब ठीक है ना? आज की सारी मीटिंग हमने खत्म कर दी थी, कहीं दादी को तो कुछ नहीं हो गया? सब ठीक है पृथ्वी, मुझे बस ये कहना है कि कुछ भी करके मिसेस सिंघानिया का पता लगाओ, मैं अब इशिका को और परेशान नहीं देख सकता हूँ, अभिमन्यु ने गंभीर स्वर में कहा। ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, पर कल एक आदमी से मिलने वाला हूँ। उसने मर्चेंट विला के अंदर जाने का रास्ता निकाल दिया है, शायद वहां से हमें कोई हिंट मिल जाए, पृथ्वी ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने उसकी बात पर सहमति जताई। वो भी थोड़ा रिलैक्स था कि इस मामले में छोटा ही सही पर एक हिंट मिल गया था। पृथ्वी से बात करने के बाद अभिमन्यु भी सोने चला गया था। दूसरी तरफ अर्पित को गोवा आए हुए लगभग 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में उसने राधिका की जिंदगी से जुड़ी काफी जानकारी हासिल कर ली थी। अर्पित ने उसके बारे में बताने के लिए गौतम मर्चेंट को कॉल किया। गौतम हमेशा की तरह अपने कमरे में उस वक्त पर लंच कर रहे थे। राधिका इस वक्त जिस आइलैंड पर थी वो इंडिया से काफी दूर था, टाइम डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था। बोलो, क्या पता चला है उसकी जिंदगी के बारे में? गौतम ने अपनी सख्त आवाज में पूछा। बहुत कुछ पता चला है, आपका शक बिल्कुल सही था। उस वक्त राधिका ने जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया था। उस आदर्श सिंघानिया ने हमें बेवकूफ बनाया और एक बच्ची को हमें दे दिया था। उसने राधिका को भी बेवकूफ बनाया था। उसकी बेटी को उसने अपनी नाजायज बेटी से बदल दिया। कुछ दिनों पहले ही ये खुलासा हुआ था कि राधिका की असली बेटी इशिका सिंघानिया थी, ना कि आयशा सिंघानिया। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। राधिका की दूसरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट थी, अर्पित ने उन्हें सब बताते हुए कहा।
इंटेलिजेंट थी से तुम्हारा क्या मतलब है? गौतम ने हल्का चौंकते हुए पूछा। थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रही है। कुछ तो गड़बड़ है डैड, और उसका पता मैं लगा ही लूंगा। वैसे एक और बड़ी बात आपको बतानी थी, राधिका की दूसरी बेटी अभिमन्यु राजवंश की पत्नी है। अभिमन्यु राजवंश कौन है आप जानते हैं ना? सोचिए, अगर वो दोनों आज भी साथ हुए तो उनका बच्चा हमारे किस कदर काम आ सकता है, अर्पित ने सनक भरी आवाज में कहा। गौतम उसके कहने का मतलब समझ सकते थे। इशिका और अभिमन्यु दोनों ही उनके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थे। ये बात तय थी कि उनका बच्चा जब भी होगा तो वो उनसे भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला था। इतना सब कुछ जानने के बाद भी गौतम के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं था। उन्होंने बिना किसी भाव के कहा, ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, उसकी बेटी मर चुकी है तो झूठे सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। नहीं डैड, वो जिंदा है, बस हमें उसे ढूंढना है। और यकीन मानिए, अर्पित मर्चेंट एक बार किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो वो उसे हासिल करके रहता है। बस मुझे कुछ घंटे का टाइम दीजिए, मैं सब पता लगा लूंगा, अर्पित ने जवाब दिया। उसकी आवाज में काफी कॉन्फिडेंस था। जो राज इतने सालों में पता नहीं कर पाए वो कुछ घंटे में क्या कर पाओगे? फिर भी तुम कह रहे हो तो कुछ घंटे दे देता हूँ। बाकी इन कुछ घंटों में अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो दिल्ली चले जाना। अभिमन्यु राजवंश को आइलैंड लेकर आना है। मुझे नहीं लगता आदित्य ये काम अकेले कर पाएगा, गौतम ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया था। गौतम की बातों से साफ जाहिर था कि उन्हें अर्पित पर यकीन नहीं हो रहा था। ऊपर से सब जानते थे कि यशिका मर चुकी है, लेकिन इनसे अलग अर्पित इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट था कि यशिका जिंदा है। गौतम से बात करने के बाद अर्पित दूसरी तरफ पलटा और फिर बोला, तो इतनी मार खाने के बाद भी तुम नहीं बताने वाले कि तुम्हारी बॉस इशिका सिंघानिया यानी डॉक्टर मर्चेंट कहाँ है? मत बताओ, मुझे भी सच उगलवाने के और तरीके आते हैं। अर्पित की नज़रें सामने दिशांक पर टिकी हुई थी, जो इस वक्त बांधा हुआ था। उसने नीचे सिर्फ पैंट्स पहन रखे थे। अर्पित ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था, लेकिन फिर भी दिशांक के मुँह से एक शब्द नहीं निकला था। अर्पित बहुत बड़ा सनकी था, और अब इस वक्त वो कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहा था जिसके बाद दिशांक तो क्या, उसकी जगह कोई और होता तो वो भी उसका सब्र जवाब दे देता। मेरी बाकी कहानियां भी है, आप पढ़कर ट्राई करें, आपको अच्छी लगेगी। आप ऊपर मेरे प्रोफाइल के नाम पर क्लिक करेंगे तो मेरी आईडी खुल जाएगी।